إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں ایک راحت کے ایک تکلیف کے اور اگر ان حالات میں آخرت میں اللہ کے وعدے جنت اور جہنم اور جو بھی مراحل آخرت میں پیش آنے والے ہیں ایک آدمی کے دل میں اگر ان کا یقین ہو تو اس کے لیے اچھے برے تمام حالات میں دین پر جمنا آسان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی دور میں جب صحابہ کو ستایا گیا اور دین کی بنیاد پر ان کو عذاب دیا گیا پریشان کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا وعدہ اور جنت کی بشارت دی تاکہ دین پر جمنا ان کے لیے آسان ہو جائے. اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دنیاوی لذتیں اور دنیا کی نعمتیں اس کے لیے اللہ کے دین پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, وہ ان نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور اللہ کے حکموں کو بھول جاتا ہے. تو ایسے وقت میں بھی موت کا یاد رکھنا, قبر کے اندھیرے کو یاد کرنا اور جہنم کے عذاب اور اسی طرح سے حشر کے حالات کو یاد رکھنا اس کے لیے ایک یاد دہانی اور اصلاح کا بہت ہی عمدہ ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ خصوصاً اچھے حالات میں اور عام طور سے وہ اپنی زندگی کے اختتام کو نہ بھولے, وہ اپنی موت کو نہ بھولے. اس لیے کہ موت دار العمل سے دار الجزا میں جانے کا دن ہے, یا موت وہ حالت ہے وہ دروازہ ہے کہ جس سے ایک انسان دنیا سے نکلتا ہے اور آخرت میں جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات, لذتوں کو ڈھانے والی یعنی موت اس کو خوب یاد کیا کرو. فما ذکرہ عبد قط وهو فی ضیق الا وسعہ علیہ, جو بھی بندہ اس کو تنگی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ موت کی یاد اس کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کرتی ہے, تنگی دور ہو جاتی ہے. اور ولا ذکرہ وهو فی سعۃ الا ضیقہ علیہ, اور جو بھی بندہ اس کو وسعت کے کشادگی کے آرام کے راحت کے حالات میں یاد کرتا ہے تو یہ موت کا یاد کرنا اس کے حالات کو تنگ کر دیتا ہے. تو جیسے بھی حالات انسان کے ہوں موت کی یاد اس کو دوسرے پہلو کی طرف لے جاتی ہے. تنگی کے حالات ہیں, موت کو یاد کرنا بتاتا ہے کب تک رہے گی, بیماری کب تک رہے گی, پریشانی کب تک رہے گی, ایک دن موت آئے گی دنیا کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اگر دین پر عمل کرتا رہا یہ مصیبتیں موت کے ساتھ ختم اور ہمیشہ کی راحت ہے, تو دنیا کی تنگی ہلکی ہو جاتی ہے موت کی یاد کی وجہ سے. اور اگر آدمی دنیا میں بے دینی پر جی رہا ہے, مال و اسباب کے اندر سانس لے رہا ہے, تو ایسا آدمی جیسے ہی موت کو یاد کرتا ہے اس کو ٹینشن آنا شروع ہوتا ہے, वो सोचता है ये मेरी सारी नेमतें हमेशा रहने वाली नहीं है, और मैं जो गफलत की जिंदगी जी रहा हूं ये गफलत मुझको जहन्नम से बचा नहीं सकती है। जहन्नम को भूलने से, अल्लाह को भूलने से, अल्लाह हमको नहीं भूलता है, अल्लाह जरूर हिसाब लेने वाला है, आखिरत में जरूर अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, तो उस दिन की तैयारी करना जरूरी है। तो एक इंसान के लिए लज्जतें फीकी हो जाती हैं, जिंदगी तंग हो जाती है जब कुशादगी के हालात में मौत को याद करता है, और ये जरिया बनता है उसके लिए गुनाह से बचने का और अपनी इस्लाह करने का। इसको इमाम अल-बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में और इब्ने हिब्बान वगैरह ने रिवायत किया है। तो इसे एक बात ये मालूम हुई कि आठवां जरिया जो हमने देखा दीनदारी पर जमने का और इस्लाह पर कायम रहने का, ये है कि एक आदमी हर हाल में मौत को याद रखे और मौत के बाद की जिंदगी, जन्नत और जहन्नम और इस तरह के तमाम मराहिल को याद रखे। नंबर 9, दीन पर जमने का जरिया ये भी है कि एक आदमी के सामने जैसे ही इल्म की बात आए वो उस पर अमल करे, जैसे ही वो कोई नसीहत कुरान और सुन्नत में सुने, किसी मुअल्लिम और मुरब्बी से जैसे ही कोई तरगीब और तरहीब की बात सुने, जैसे ही उसके सामने इल्म आए वो इल्म पर अमल करे। अगर वो इल्म पर अमल कर लेता है तो दिल में इकरार मजीद कवी हो जाता है, मानी हुई बात मजबूत हो जाती है और एक अमल अगले अमल के लिए रास्ता हमवार करता है। लेकिन अगर नसीहत सुनकर सुनी अनसुनी कर दे और अल्लाह के दीन की बात सुने, अल्लाह का हुक्म सुने और उसको टाल दे, तो आज की बेअमली कल के लिए मजीद बेअमली का दरवाजा खोलती है। इसीलिए जैसे ही कोई नसीहत की बात आदमी सुने, जैसे ही कुरान और सुन्नत की बात सामने आए, जैसे ही अल्लाह के अहकाम उसके सामने आए, आदमी को चाहिए कि फौरन उस पर अमल करे ताकि आज का अमल कल के लिए मजीद आसानी पैदा कर ले। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, बचपन से अगर माँ बाप उनको नमाज की आदत डाल दें, कुरान करीम की तिलावत की आदत डाल दें, इस्लामी आदाब का लिहाज करने की आदत डालें, तो बचपन से अमल करते 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 बाद में अमल आसान हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको इसकी आदत नहीं होती है, बाद में अमल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक अमल, एक वक्त का अमल उसके लिए अगले अमल को आसान करता है और एक बेअमली अगली बेअमली को आसान कर देती है, अमल को मुश्किल कर देती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वलौ अन्नहुम फअलु मा युअज़ून बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। कुछ लोगों के बारे में पिछली कौमों का तस्किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया और नाफरमानों का तस्किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम फअलु मा युअज़ून बिही, अगर वो लोग उस वाज व नसीहत पर अमल कर लेते जो उन्हें की गई थी, लकान खैर लहुम, तो ये उनके लिए ज्यादा खैर की बात थी, ज्यादा बेहतर बात थी, वह अशद्द तस्बीता और उनको ज्यादा दीन पर जमाने वाली चीज होती है। यानी जैसे नसीहत सुनी अगर फौरन अमल कर लेते तो इनके लिए आखिरत में खैर का जरिया और दुनिया में साबित कदमी का जरिया ये बन जाता है। लेकिन आदमी चूंकि नसीहत सुनता रहता है और उसको नजरअंदाज करता रहता है, तो ऐसा उसको नजरअंदाज करना बाद की बेअमली के लिए, एक के बाद एक बेअमली उसके लिए शुरू हो जाती है। आप एक आदमी दीन की बात सुनता है, उसको सुनी अनसुनी करता है, उसकी कदर दिल से कम हो जाती है, और एक बार आदमी अमल छोड़ देता है अगली बार छोड़ना और आसान हो जाता है। आप देखिए एक आदमी है, एक नमाज छोड़ दे उसको बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद और नमाजें छोड़ता चला जाए धीरे धीरे आदी हो जाता है, फिर साल में महीने में कभी नमाज पढ़ने लगता है। कितने बेनमाजी जो है नमाजी बनते आते हैं और कितने नमाजी बेनमाजी बन जाते हैं। कैसे होता है कि एक अमल आदमी आज करे और जज्बा रख के करे कि कल और करूंगा, तो उसके लिए और अमल आसान हो जाता है। लेकिन आज एक अमल छोड़ दे, सोचे कल करेंगे देखेंगे, तो वो अमल कल और ज्यादा मुश्किल होता है, आदमी और नीचे उतर आता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि जो नसीहत भी सुने, जो दीन की बात सुने, उस पर अमल कर ले, अमल कर ले। सहाबा जैसे अल्लाह का हुक्म आया शराब हराम, फौरन उन्होंने उसको छोड़ दिया। सहाबा की खास सिफत यह थी कि जैसे अल्लाह का हुक्म आ जाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे देते, फौरन अमल करते थे। लेकिन हमारा आज मामला यह है कि हमारे सामने हुक्म आता है, हम उसके लिए एक डेट रखते हैं। कोई आदमी सोचता है इस मरतबा रमजान से नमाजी बन जाऊंगा, कोई आदमी सोचता है जुमा से बनूंगा, कोई आदमी सोचता है फुला जो है इम्तहान हो जाए उसके बाद से मैं नमाज पढ़ूंगा, कोई आदमी सोचता है जॉब मिल जाएगा ना ऐसा करूंगा, कोई आदमी सोचता है निकाह हो जाएगा तब से मैं करूंगा। कल करने वाला कभी नहीं करता है, आज जो करता है वही आदमी कल भी करता है, जो कल पर टाल देता है उसका कल कभी आता नहीं है। इसलिए आदमी आज से शुरुआत करे, अब से शुरुआत करे तो उसके लिए कल अमल करना आसान हो जाता है। तो जैसे इल्म हमारे सामने आया फौरन अमल करे, तो ये भी दीन पर जमने का एक बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह से दसवीं चीज ये है दीन पर जमने की कि एक इंसान अल्लाह के दीन की नुसरत में अपनी सलाहियतों को सर्फ करे। कि एक आदमी है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ इल्म है। इस इल्म को आम करने और जिंदगियों में इस इल्म के मुताबिक अमल लाने की जद्दोजहद करे, ये अल्लाह के दीन की मदद है। चाहे वो अपने माल को अल्लाह के दीन में सर्फ करना हो, चाहे अपने कौल और अपने बदन को अल्लाह के दीन के लिए भगाना और सर्फ करना हो, इस्तेमाल करना हो, चाहे वो अपनी जान देना अल्लाह के दीन के लिए क्यों ना हो, जैसा तकाजा अल्लाह की तरफ से हो आदमी वैसे के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह के दीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए आदमी तैयार हो जाए। तो ये जज्बा जब आदमी के लिए अंदर हो और आदमी अपनी इस्तेताद के मुताबिक अल्लाह के दीन की मदद करता चला जाए, अल्लाह के दीन की दावत देने लगे, तो ये दावत भी उसके लिए दीन पर अमल का जरिया बन जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तो एक अमल पर दो वादे, कितनी अजीब चीज है। देखिए अमल एक है, मुतालबा एक चीज का है, लेकिन वादे अल्लाह की तरफ से दो चीज के हैं। एक तो ये कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत है, हम ही अल्लाह से मांगते हैं इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन, हमको अल्लाह की मदद की जरूरत है। लेकिन यहां पर अल्लाह ने कहा अल्लाह की मदद करोगे, यानी अल्लाह के दीन की, जो अल्लाह ने अपने नबी की शरीयत भेजी है, अल्लाह का दीन भेजा है, उस दीन की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। और दूसरी चीज वो युसब्बित अक़दामक, कि तुम्हारे कदमों को जमा देगा। एक तो खारजी तौर पर तुम्हारे मुकाबिल जो रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, अल्लाह उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा, परेशानियों को हटाएगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा बाहर की चीजों से। दो, जब तुम अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए कोशिश करोगे तो अंदर से भी तुमको मजबूत करेगा, बाहर से तुम्हारी हिफाजत करेगा और अंदर से तुम्हारी इस्तिकामत और तुम्हारी साबित कदमी के वसायल पैदा करेगा, तुमको और दीन पर जमाएगा, तुमको मुखालिफिन के मुकाबले में और इस्तिकामत देगा और साबित कदमी देगा। वो सब अक़दामक, तुम्हारे कदमों को जमाएगा। तो एक आदमी अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए अपने सीने को खोल दे, अपना इरादा पुख्ता करे कि जहां अल्लाह के दीन को जिस एतबार से भी जरूरत होगी, मैं अपनी सलाहियत के बकदर जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है मैं अल्लाह के दीन की मदद करूंगा। अल्लाह का दीन जिंदगियों से निकलता रहे, अल्लाह की शरीयत जमीन पर से उठती रहे, मिटती रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लोग मजाक बनाते रहें, लोग बेहुदा चीजों को दीन का मकाम देते रहें, और मुसलमान जो है मुसलमान बेफिक्री की सांस, बेफिक्री की चादर ओढ़ के सोता रहे, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे और उसको सुकून ना आए जब तक कि वह हर इंसान तक अल्लाह के दीन को नहीं पहुंचाता है, जहां तक कि अल्लाह ने उसको ताकत दी है, और जो भी उसके लिए मुतालबा अल्लाह के दीन की तरफ से हो उसके लिए वो तैयार है। तो ये 10 बातें थी जो अल्लाह के दीन पर जमने के लिए ज़रूरी थी। अल्लाह ताला मुझको और आपको अल्लाह के दीन पर जमने और इसी पर जीने और इसी पर मरने की तौफीक अता फरमाए। तो ये हमारा पहला मौजू था जो दीन पर साबित कदमी, दीन पर जमने के सिलसिले में था कि हम कैसे दीन पर जमें।